नमस्कार, आज हम इंटरनेट की आप कह सकते हैं थोड़ी छुपी हुई दुनिया में झांक रहे हैं। वो दुनिया जिसके बारे में अक्सर कम ही बात होती है, साइबर क्राइम, ऑनलाइन खुद को कैसे बचाएं, और हाँ वो डार्क वेब जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं। हमारे पास ना साइबर क्राइम एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ हुई एक बातचीत के कुछ अहम हिस्से हैं। इसमें कुछ ऐसी कहानियां हैं जो चौंका देंगी और ऑनलाइन सेफ्टी से जुड़ी बहुत जरूरी जानकारी भी है। हमारा मकसद बस यही है कि इस बातचीत से वो खास बातें निकालें जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, ताकि हम सब ऑनलाइन दुनिया के जो खतरे हैं ना उन्हें थोड़ा बेहतर समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत एक कहानी से करते हैं जो सच में सोचने पर मजबूर करती है। कैसे एक ऑनलाइन गेम किसी टीनेजर पर इतना हावी हो सकता है कि वो अपनी पालतू बिल्ली को चोट पहुंचा दे और खुद भी खतरे में पड़ जाए। सुनने में आया कि गेम में बड़े जीप टास्क थे, जैसे छत पर कपड़े जलाना, गाड़ी के टायर पंचर करना और बिल्ली को मारना। ये सब क्या था?
हाँ, ये घटना असल में दिखाती है कि ऑनलाइन दुनिया कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है और कभी कभी खतरनाक भी, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए। जैसा पता चला, ये सिर्फ खेल के टास्क नहीं थे, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव था। कुछ गेम्स या एप्स ना लोगों को, खासकर युवाओं को, दिमागी तौर पर बहुत असर करते हैं। उन्हें डिप्रेशन या अजीब खतरनाक बर्ताव की तरफ ढकेल सकते हैं। और चिंता की बात यह है, जैसा आपने कहा, उस लड़के को इस असर से बाहर आने में लगभग 1.5 साल लग गए। तो ये साफ है कि बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखना और उनसे बात करते रहना बहुत जरूरी है।
हाँ, ये तो है। और ये बात सिर्फ गेम्स की नहीं है, हम रोज जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कई खतरे छुपे हैं। जैसे वो OTP चुराने के तरीके, आपने भी सुना होगा, एक्सपर्ट ने कुछ आम तरीकों के बारे में बताया था जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कुछ खास तकनीकों पर रोशनी डाली थी। एक है कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम। इसमें क्या होता है कि किसी बहाने से, मान लीजिए कोई कहता है आपका गिफ्ट अप्रूव हुआ है या KYC करनी है, और आपसे एक कोड डायल करवा लेते हैं, 401 या ऐसा ही कुछ।
अच्छा।
हाँ, और आपको पता भी नहीं चलता, और आपकी सारी कॉल्स और मैसेज जिनमें OTP भी होते हैं वो उस फ्रॉड करने वाले के नंबर पर जाने लगते हैं।
अरे बाप रे, अनजाने में हम खुद ही,
बिल्कुल खुद ही दरवाजा खोल देते हैं।
और वो स्क्रीन शेयरिंग वाले तरीके,
वो कैसे काम करते हैं?
हाँ
हाँ, वो भी बहुत कॉमन है आजकल। इसमें ना स्क्रीन शेयरिंग एप्स हैं, जैसे टीम व्यूवर, क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क। इनका गलत इस्तेमाल होता है। कोई फ्रॉड करने वाला आपको बैंक अधिकारी या कस्टमर केयर वाला बनकर कॉल करेगा, कहेगा आपकी मदद करनी है, और ये ऐप इंस्टॉल करवा देगा।
अच्छा, मदद के बहाने।
हाँ, और जैसे ही ऐप इंस्टॉल हुआ वो आपकी पूरी स्क्रीन लाइव देख सकता है अपने फोन पर। तो जैसे ही आपके पास कोई OTP आता है मैसेज में, वो उसे वहीं देख लेता है और इस्तेमाल कर लेता है। यहाँ तक कि QR कोड स्कैन करवाकर भी स्क्रीन शेयरिंग एक्टिवेट कर दी जाती है आजकल।
ओह, QR कोड से भी?
जी हाँ, और एक्सपोर्ट ने वॉइस मेल हैकिंग और eSIM क्लोनिंग का भी जिक्र किया था। eSIM क्लोनिंग में तो बस एक QR कोड स्कैन करके आपका सिम वो अपने फोन में चालू कर सकते हैं।
ये तो बहुत ही शातिर तरीके हैं। अच्छा, अब आते हैं उस जगह पर जिसका नाम सुनते खड़ा डर सा लगता है, डार्क वेब। आखिर ये है क्या भला, और इतना बदनाम क्यों है?
देखिए, डार्क वेब जो है वो इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे हमारे नॉर्मल सर्च इंजन जैसे गूगल वो इंडेक्स नहीं करते, ढूंढ नहीं पाते। इसको एक्सेस करने के लिए ना स्पेशल ब्राउजर चाहिए होता है, जैसे टॉर ब्राउजर।
अच्छा।
और मजेदार बात यह है, जैसा कि एक्सपर्ट ने बताया कि इसे बनाया असल में अमेरिकी डिफेंस एजेंसी ने था।
सच में? डिफेंस एजेंसी ने?
क्यों?
क्यों?
हाँ, अपनी जासूसों के लिए, ताकि वो दुनिया भर में बिना किसी लोकल सरकार की निगरानी में आए सेफली बात कर सकें, एनोनिमस रह सकें।
ओह, तो शुरुआत तो सुरक्षा के लिए हुई थी।
बिल्कुल, लेकिन हुआ ये कि इसकी जो गुमनामी वाली खासियत है उसका फायदा गलत लोगों ने उठाना शुरू कर दिया।
आज एक तरह का बाजार बन गया है अवैध चीजों का,
जैसे ड्रग्स, हथियार, चोरी का डेटा, क्रेडिट कार्ड नंबर, हैकिंग सर्विसेज।
अरे बाप रे।
हाँ, और यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसी बातें भी सुनने में आती हैं। और बिटकॉइन जैसी जो क्रिप्टो करेंसी है ना, जिनसे पेमेंट छुपा रहता है, उन्होंने इसे और बढ़ावा दिया। और एक और दिलचस्प बात बताई गई थी कि हम रोज जो इंटरनेट यूज करते हैं, जिसे सरफेस वेब कहते हैं, वो पूरे इंटरनेट का शायद सिर्फ 3 या 4% ही है।
क्या? सिर्फ 3-4%?
गवर्नमेंट डेटाबेस, क्लाउड स्टोरेज, जो अवैध नहीं है, बस आम लोगों की पहुंच में नहीं है। और उसी में एक छोटा सा हिस्सा है डार्क वेब।
अच्छा, ये जानकारी तो काफी अहम है। वैसे कई लोगों को लगता है कि अगर वो VPN या इनकॉग्निटो मोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पूरी तरह सेफ है, गुमनाम है। क्या ये सच है?
नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, इनकॉग्निटो मोड जो है वो सिर्फ आपके कंप्यूटर या फोन पर आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं करता, बस इतना ही। लेकिन आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब जियो, एयरटेल या जो भी, वो आपकी एक्टिविटी देख सकता है और जिस वेबसाइट पर आप जा रहे हैं वो भी आपको ट्रैक कर सकती है। गूगल पर तो केस भी हुआ था इनकॉग्निटो मोड में ट्रैकिंग को लेकर।
अच्छा, तो इनकॉग्निटो से कोई खास फायदा नहीं है प्राइवेसी का?
लिमिटेड फायदा है, लोकल डिवाइस पर हिस्ट्री नहीं बचती, बस।
और वीपीएन, वो तो लोकेशन बदल देता है ना?
हाँ, वीपीएन आपकी लोकेशन और आईपी एड्रेस छुपा सकता है, ये सही है, लेकिन पूरी तरह गुमनामी वो फिर भी मिलना बहुत मुश्किल है। और जैसा एक्सपर्ट ने बताया, भारत में तो अब कानून भी है कि वीपीएन कंपनियों को यूजर्स की एक्टिविटी का लॉग, मतलब रिकॉर्ड, रखना पड़ता है।
अच्छा।
हाँ, और अगर कोई कानूनी एजेंसी मांगती है तो उन्हें वो देना भी पड़ता है।
तो मतलब वीपीएन भी फुल प्रूफ नहीं है इंडिया में?
नहीं, और जो फ्री वाले वीपीएन होते हैं उन पर तो वैसे भी भरोसा कम करना चाहिए, उनकी स्पीड कम हो सकती है और कई बार कनेक्शन बीच में टूट जाता है। जैसे ही कनेक्शन टूटा, आपका असली आईपी एड्रेस सबको पता चल जाता है। तो कहने का मतलब है, डिजिटल दुनिया में पूरी तरह गायब हो जाना वो लगभग नामुमकिन सा है।
तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ है, हम ऑनलाइन चाहे कितना भी छिपने की कोशिश कर लें, कहीं ना कहीं हमारे डिजिटल निशान तो छूट ही जाते हैं।
बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, जिसका इशारा एक्सपर्ट की बात में भी था, कि जब इंसान को लगता है कि उसे कोई देख नहीं रहा है, वो पूरी तरह अनोनिमस है, गुमनाम है, तब उसके अंदर का कौन सा पहलू बाहर आता है? क्या डार्क वेब पर जो इतनी खतरनाक और भयानक चीजें मिलती हैं, वो इसी गुमनामी के अंधेरे में पनपने वाली इंसान की फितरत का ही आईना है? सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी हमें जोड़ती जरूर है, लेकिन ये जो गुमनामी का पर्दा है, ये असल में क्या छुपाता है? ये सवाल जरूर सोचने लायक।